તારીખ 29/12/1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 783 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 9
શામિલ હોય એસી ભાવના સે જો પત્ર લિખા હુઆ હૈ સુભાષ ભાઈ કો વો અપને પરમ સખા કહેતે થે માનતે થે ઓર વર્તમાન ભાવ મે ફિર સે સ્વરૂપ સંમુક્તા આને મે સુભાષ ભાઈ નિમિત હુએ હૈ कई साल की अपनी उम्र में प्रथम भादवा में सुभाष भाई उनको मिलना हुआ और आसुन में या कार्तिक के प्रारंभ में शायद दिवाली के करीब करीब वो सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो गई। स्वरूप सम्मुखता में डेढ़ दो मास के सम्मुख पुरुषार्थ में सुभाष भाई नियमित हुए। इनकी एक योग्यता थी, ये सुभाष भाई की योग्यता थी, तो सुभाष भाई के प्रति बहुत बहुमान हुआ है। सज्जन पुरुष भी लौकिक में पानी भी पिलाता है तो उनको उपकार समझता है, कहीं तुषा लगी हो यात्रा में कोई पानी पिला देता है तो भी उपकार समझता है। आत्मकल्याण में अग्रसर होने के लिए कोई निमित्त पड़ता है तो उनके प्रति तो अति उपकार का भाव आना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए पत्र के प्रारंभ में कृपालु गुरु ने सुभाष भाई को नमस्कार किया है। श्री सुभाग को नमस्कार, यहाँ से पत्र प्रारंभ किया है। हाँ, सखा मैंने मित्र शिष्य ने कहा, मित्र कहा ऐसा विशेषण दिया है। सुभाग भाई के विषय में पूरी जानकारी मिल जाए, अच्छी तरह जानकारी मिल जाए, इसके लिए एक महीने थोड़ी तैयारी किया है। आत्म जागृति में देंगे। त्रंबक भाई आदि जो इनके लड़के थे, पुत्र थे, त्रंबक भाई मणि भाई, उनको ये पत्र लिखा गया है। उनको लिखा गया है, लेकिन पत्र का जो विषय है वो सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी हो जाए ऐसी बात है। इसलिए मात्र ये घरेलू पत्र व्यवहार है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य को भी उपकारी हो जाए ऐसी बात इसमें बहुत सुंदर बातें आई है। प्रारंभ में ही श्री सुभाष भाई के विषय में, इनकी मुमुक्षु दशा के विषय में प्रशंसा किया है और अपने परिणाम को प्रसिद्ध किया है कि मेरे परिणाम फिलहाल कैसे चलते हैं, वर्तमान में कैसे चलते हैं। श्री सुभाष की मुमुक्षु दशा तथा ज्ञानी के मार्ग प्रति के उसका अद्भुत निश्चय बार बार हमें स्मृति में आया करता है। क्या कहते हैं, वर्तमान में इनकी उपस्थिति नहीं है तो स्मरण आता है कि कितने उत्कृष्ट मनुष्य दशा में वो आए हुए थे। प्रारंभ से ही बहुत प्रारंभ से ऐसा क्यों हुआ कि इनकी खोज थी, कोई सत्पुरुष मिल जाए इसकी एक खोज थी। कहीं कहीं गए भी थे लेकिन कोई सत्पुरुष नहीं मिले थे। प्रारंभ से उत्कृष्ट क्यों थे, वो खोज करते थे और जब प्रत्यक्ष मिल गए, परिचय हुआ तो पहचान लिया। प्रथम मिलन में ही पहचान लिया था। यही परिस्थिति इनकी उत्कृष्ट मुमुक्षुता को प्रसिद्ध करती है। अनंत काल में जीव ने अनंत ज्ञान विकास सत्संग मिलने पर भी एक बार पहचाना नहीं है। कृपा के महातक कहते हैं कि एक बार भी सत्पुरुष की पहचान जिस मुमुक्षु को हो गई वो निर्वाण पद का अधिकारी होता है। समय दर्शन का अधिकारी नहीं लिखा है, क्या लिखा, निर्वाण पद का अधिकारी लिखा है। इतनी पात्रता को देखी नहीं उन्होंने। उन्होंने पहचान लिया और आपस में एक दोनों के प्रति बहुत सम्मान बहुमान का परिणाम प्रभावी हुआ है। दूसरा विशिष्ट योग्यता वाली बात उन्होंने यह देखी जो यहाँ संक्षेप में लिखी है कि ज्ञानी के मार्ग प्रति के उसका अद्भुत निश्चय योग्यता का विशेष बात है। उन्होंने ये दृढ़ निर्धार कर लिया था कि मुझे अपनी कोई बात रखनी नहीं है, अपने से कोई बात, अपने आप से कोई बात नहीं करनी है। जो ज्ञानी कहे वो निश्चय साबंध है, ऐसा एक दृढ़ निश्चय ये परम योग्यता का सूचक है। उसमें ये बात नहीं थी, वो तो खुद ही खोलेंगे इस पत्र में, वो बात खोलेंगे कि ज्ञानी के मार्ग प्रति का निश्चय माने क्या। तो वो तो उसमें हाँ हाँ भरे सब मस्तक ज्यादा है, उतनी बात नहीं। वो कहने उनका अमलीकरण भी करने लग जाए क्योंकि वो उसकी आज्ञा है। मात्र सुनना उतनी आज्ञा नहीं है, जो कहते हैं वो करने की भी इसकी आज्ञा है। वो बात उनको दिखती है कि मुझे सिर्फ सुनना नहीं है, बहुत तो सुन करके पूर्ण विराम लगा देते हैं मुमुक्ष, इसलिए वो अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं, सुनने पर भी क्यों अटकते हैं कि सुनने के बाद पूर्ण विराम आ जाता है कि ऐसी बात हम पहले नहीं समझते थे, चलो हम समझ गए, अच्छा हुआ समझ में तो आया। पर कभी नीचे को देख, नीचे वाले को देख लेते हैं, इनको नहीं समझ में आता है, मुझे समझ में आता है। दूसरों को नहीं समझ में आता, उसको नहीं बैठती, हमको तो बैठ गई बात। ये अच्छा लक्षण नहीं है। नीचे जाना हो तो नीचे वाले को प्रति दृष्टि देना, ऊपर उठना हो तो ऊपर वाले के प्रति दृष्टि देनी चाहिए। इसलिए जो बात समझ में आए उसका प्रयास चालू हो जाए, तत्काल प्रयास चालू हो जाए, ये वर्तमान पात्रता का द्योतक है। वर्तमान पात्रता ऐसी होती है, ऐसा एक प्रकार श्री सुभाष भाई में भी था, इसका उल्लेख है। बहुत अच्छी पात्रता थी। तो आखिर में सुभाष भाई उस मनुष्य आयु पूर्ण करते पहले लेटे लेटे भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया था। लेटे लेटे होता है कि नहीं होता है प्रश्न हुआ था ना, क्यों? क्योंकि ऐसी शरीर की अवस्था इतनी कमजोर थी, एक तो वृद्धावस्था थी, उसी बीमारी आ गई थी। पिछले 8-9 महीने से तो वो बुखार में चलते थे। वृद्धावस्था में 8-9 महीना बुखार आता रहे तो क्या हालत हो जाए। और फिर आखिरी दिनों में तो बहुत कमजोरी थी शरीर की, इतनी कमजोरी थी कि उसको चौपाई पर लेटे रहना पड़ता था। लेकिन पुरुषार्थ में इतनी तेजी आई, पुरुषार्थ में इतनी तेजी आई कि शरीर की कमजोरी का लक्ष्य छूट गया। कहते हैं गुरुदेव युवानी लिखते हैं सुबह युवानी आ जाती है, वहां पर उतना पुरुषार्थ हो गया कि देहांत के पहले पहले 17-18 दिन करीब है, जो पत्र पड़ा उसमें सुभाष भाई का, आत्मा भिन्न हो गया अनुभव में, अनुभव में संयोग में था, अनुभव में भिन्न हो गया। और सहज ऐसी दशा वर्तती है ऐसा उन्होंने कृपा देव के प्रति उपकृत भावना से लिखा हुआ पत्र के, आपके उपकार से मेरी हालत हो गई है, ऐसा करके लिखा। तो उन्होंने मनुष्य आयु पूर्ण करते करते पहले अनंत भव का अभाव करने का एक जबरदस्त पराक्रम कर लिया पुरुषार्थ का, और जिनके भव भ्रमण है उसकी अनंतता छूट गई। बहुत अल्प भव में वो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएंगे। इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य करने के लिए जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं। ऐसी इनकी परम योग्यता, इनकी अनुपस्थिति में भी कृपालु देव का स्मरण का विषय रहता है। ज्ञानी के पवित्र ज्ञान के पर्याय में इनकी फोटो बार बार आया करती है, कैसे थे कैसे थे। यदि नाम ही इनका सौभाग्य था, काम भी वास्तविक इनकी योग्यता भी सौभाग्य वाली थी। अब जो लिखना है उस विषय का प्रारंभ करते हैं। सर्व जीव सुख को चाहते हैं, इच्छते हैं, परंतु कोई विरल पुरुष यह सुख का यथार्थ स्वरूप जानता है। जगत के सर्व जीव सुख को इच्छते हैं, दुख को तो कोई नहीं इच्छते, लेकिन दुख को ही सुख का स्वरूप माना है तो उसको प्राप्त करने जाता है तो सुख नहीं मिलता है, उल्टा उसको दुख मिलता है। इसलिए सुख का यथार्थ स्वरूप कोई विरल पुरुष ही जानता है, कृष्णम आत्मा। कोई ऐसा जीव होता है जो सुख का सच्चा स्वरूप जानता है और उसी को ही ऐसा सुख मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। जन्म मरण आदि अनंत दुख का आत्यंतिक सर्वथा क्षय होने का उपाय अनादि काल से जीव को जानने में नहीं आया, आया ही नहीं है। बहुत भाग तो विश्व में वो बात चलती है कि अपने को कुटुंब की फर्ज अदा करनी चाहिए, देश की फर्ज अदा करनी चाहिए, मानव धर्म की फर्ज हमारी अदा करनी चाहिए, पर जन्म मरण तो अनिवार्य वस्तु है, इसका तो कोई इलाज ही देखने में नहीं आता, तो उसके विषय में विचार करना ही छोड़ देते हैं। ये तो होता है, सबका होता है, इसका बिगड़ा ही तो हो ही नहीं सकता, वो जन्मता ही मरता ही है, तो नहीं मरना नहीं चाहते हो भी मरना पड़ता है, उसमें क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे मान्यता के वशात इस विषय में इस दिशा में कोई प्रयत्न संसारी जीवों का नहीं दिखता। लेकिन इसका विषय जैन दर्शन में है, मुक्ति प्राप्त करने का, जन्म मरण से छूटने का उपाय जैन दर्शन में है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जीव को जानने में नहीं आ रहा है, कैसे मुक्त होगा ये जानने में नहीं आया है, तो अनाधिकार से नहीं जानने में आया है। एक बार भी जानने में आया फिर ऐसा हो गया, ऐसी भी बात नहीं है। और इस उपाय जानने की और इस उपाय को करने की सच्ची इच्छा उत्पन्न होने पर अगर जीव जो सत्पुरुष का समागम के लाभ को प्राप्त होता है तो इस उपाय को जान सकता है। क्या कहा कि किसी को मुक्त होना है, पहले तो उनको ये भावना होनी चाहिए कि कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, इसको मुक्ति का उपाय, सुधने का उपाय मुझे जानना है। सिर्फ जानना नहीं है, उसका अमलीकरण भी करना है, ये बात लिया है। और ऐसी योग्यता सुभाष भाई की थी, यही निर्देश है इसमें। जानने पर सूचता पढ़ने की बात नहीं है, पर हमने जाना बार बार जाना जानते रहे तो भी बात नहीं है। जानने के बाद उसका अमल करने को लग जाए, उसको ही सच्ची इच्छा कहते हैं, वरना मुक्त होने की सच्ची इच्छा नहीं है। जैसे और विषय में कुतूहल होता है परलक्ष्य ज्ञान में, ऐसे शास्त्र के विषय में अगर कुतूहल से ऊपर ऊपर के कुतूहल से जानकारी करने का भाव रहता है तो उसमें कोई लाभ होता नहीं है, नुकसान होने की संभावना बहुत है उसमें। लाभ नहीं हो तो नुकसान हो ही जाएगा। हम तो कहते हैं मुमुक्षुता में पुरानापन नहीं आना चाहिए, जितना मुमुक्षु पुराना उतना वो नुकसान की संभावना भी ज्यादा। इसलिए ये मुमुक्षु बहुत पुराना है वो इनका क्रेडिट का साइड नहीं है, वो डिसक्रेडिट का है। कि हमको बहुत बचपन से हमारे पिताजी के काल से हमको ये चीज मिल गई थी। अब कितना हो गया कि 40-50 साल हो गया, तो रास्ते पे आना बहुत कठिन है। जब तो रास्ते पे आना बहुत कठिन है क्योंकि उल्टा चला सीधा नहीं चला है, परिणाम तो चाल है और दिशा तो दो ही है। या तो जीव उन्नति क्रम में प्रवेश करे तो लंबा काल लगता नहीं उसको, अगर उन्नति क्रम में प्रवेश ही जीव का नहीं है तो कितना भी काल निकल जाता है, आयु पूरा होने का समय आ जाता है और हाथ में कुछ नहीं आता है। कल्याण होने का, आत्म कल्याण होने का कोई फिर आसार नहीं दिखता, कोई अवसर नहीं आएगा।
संस्कार तो मिल जाते हैं, संस्कार तो मिल जाते हैं।
क्या मिल जाता है?
संस्कार, संस्कार तो चलने वाले
व्यापार में ऐसा करते हो, दुकान पर लगा दो पैसा हमने नहीं कमाई हो, बाद में तो होगी, तभी तो होगी, ऐसा करते हो क्या? अच्छा बड़ा आता है जाने दो में कल आएगा, ऐसा करते हो क्या? परसों आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, आएगा तो कभी नहीं, कभी दुकान लेकर तो बैठे हैं, ऐसा करते हो क्या? उसको छोड़ते नहीं हो, इसका मतलब हमने लाभ माना ही नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है?
लाभ माना
ही हमने लाभ माना ही नहीं है, कहने मात्र है, इसे लाभ है इससे लाभ है वो कहने मात्र रह गया, माना नहीं।
काम आने वाला है
ऐसा निश्चय करके क्या करना चाहते हैं, ये मेरा प्रश्न है। आपके प्रश्न के सामने उत्तर में मेरा ये प्रश्न है कि इस प्रश्न से आप क्या चाहते हो? अभी नहीं करना है वो चाहते हो क्या? तो उसके अनुकूल उत्तर की अपेक्षा ठीक है क्या? प्रश्न के अनुकूल उत्तर मिल जाए वो ठीक है क्या? अभी करना है, आज करना है नहीं, इतना अभी ही करना है, ऐसा जो क्यों नहीं आता है ये बताओ पहले। तुम इतना बड़ा लाभ है, इतना बड़ा लाभ है कि अब से अभी से ही सुख शांति चालू हो जाती है, ये तो रोकने का व्यापार है, धर्म का उधारी का व्यापार नहीं है। अभी इसका लाभ मिलता है, अभी अभी लाभ मिलता है, वो पूर्ण फल में ही कैलकुलेट होंगे आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए कोई वायदा करना ऐसा क्यों, क्यों ऐसा होता है बताइए?
हम जिम्मेदारी बहुत समझते हैं,
अभी नियत ठीक नहीं है। क्या है सही बात? वो है कि हमारी नियत ठीक नहीं है, जगत में तो वंचना बुद्धि से बहुत काम करते हैं, मायाचारी तो बहुत करते हैं बनी लोग, लेकिन इधर अपने आप में भी यही परिस्थिति, ये अच्छी बात नहीं है। क्या लिखते हैं देखो, जन्म मरण आदि अनंत दुख का सर्वथा क्षय होने का उपाय अनादिकाल से जीव ने नहीं जाना है, उस उपाय जानने की इच्छा, जानने की भी सच्ची इच्छा और उस उपाय को अंगीकार करने की भी सच्ची इच्छा, हृदय से अंतरंग से शुद्ध अंतकरण से ये काम होना चाहिए। अगर ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है उसी मौके पर अगर उनको कोई सत्पुरुष का समागम मिल जाता है तो वह उपाय को जान सकता है और इसकी उपासना करके सर्व दुख से मुक्त भी हो जाता है। अगर ऐसी सच्ची इच्छा भी नहीं और उसका अमल करने की भी इच्छा नहीं सच्ची, तो सत्पुरुष मिलता है तो भी उनका समागम का उसको कुछ लाभ मिलता नहीं है और उसका जीवन मरण से मुक्त होने का भी नहीं मिलता है। तो ये क्या विशिष्ट बात आए कि सत्पुरुष का समागम किस मौके पर मिलना चाहिए, इसका मूल्य है। मिला तो है इस भव में या आगामी पिछले भव में, बहुत अनंत बार मिले हैं, तीर्थंकर मिले हैं। सत्पुरुष क्या उत्कृष्ट पुरुष को तीर्थंकर है वो मिले हैं, पावलिंगी संत के समागम भी मिले हैं अनंत बार, सत्पुरुष भी अनंत बार मिले हैं। लेकिन हमारी सच्ची इच्छा आत्म कल्याण की भी नहीं। अगर सच्ची इच्छा होए और समागम मिल जाए तो उसका निवेड़ा आ जाता है, वो छूट जाता है। इतनी सारी सीधी बात है। ये प्रश्न बार बार हमारी चर्चा में आता है कि कैसी योग्यता हो तो सत्पुरुष का लाभ मिले, सीधा उत्तर है कैसी योग्यता हो तो शुद्ध अंतकरण से हमें मुक्त होने की भावना है। और जो भी हमें मुक्त होने के विषय में जो भी उपाय समझ में आता है उनका प्रयास करने की हमारी तैयारी है कि हमको वायदा करना है चार छह महीना ये उपाधि दूर हो जाए ना, फिर हम करेंगे। ये चार छह महीना कभी पूरा होने वाला नहीं है, कहीं भी नहीं ऐसा रहता है। उतना थोड़ा प्रसन्न हो घर में या व्यापार में या कहीं भी कुछ न कुछ तो होता ही है सबको, तो आग लगा देता है, भाना पकड़ लेता है, क्योंकि नियत अच्छा नहीं है तो उसको बाना तो बहुत मिलेगा। उन्हें तो है ही समय को आठों कर्म का उदय है, इतना एक हो जाए फिर हम काम कर लेंगे बराबर। धीरे धीरे तो करते ही है, धीरे धीरे तो थोड़ा चालू तो है अपना, फिर बराबर कर लेंगे। ये अपने आप की क्षेत्रपिंडी है, किसी का सौ का सौ बाकी रहने वाला है समय का, आ जाएगा स्वयं सो के सो काम पेंडिंग रह जाएंगे और आ जाएगा कि चलो भैया इधर से तुमको ले जाएंगे। अभी नहीं निकलोगे तो बांध करके भी ले जाएंगे, ऐसे अभी चालू कर देना। तो कह रहे तो उसको लाभ मिलता है, तो उपाय को जान भी सकता है। धर्मदान सत्पुरुष के वचन से छूटने की विधि, मुक्ति होने की विधि आती है तो भी वो जान सकता नहीं है क्या होता है। तो कहते हैं फिर उनका ध्यान नहीं जाता है, लक्ष्य नहीं जाता है कि ये क्या बात आ गई, उसको आश्रय को पकड़ सकता नहीं है। कौन पकड़ सकता है कि जिसको शुद्ध अंतकरण से मुक्त हुआ होना है कोई पकड़ पाएगा, दूसरा पकड़ पाएगा नहीं। तो उपाय को जान सकता है और सिर्फ जानता ही नहीं है तो उपाय कोई उपासना करके अंगीकार करना, मैंने क्या उपासना करके दुख से मुक्त होता है उसका जीवन मरण और सर्व दुख संसार के उसको मिल जाते हैं। एक भी दुख उसको रहने वाला नहीं है, तो गारंटेड है। कृपा देव तो डॉक्यूमेंट साइन करके गए हैं, दस्तावेज असाइन करके गए हैं कि मुक्त हो ही जाएगा, नहीं होगा ऐसे बात नहीं करेगा। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, ये हमारा प्रश्न है। क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या अंतर संशोधन किया है, तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों है। जहां हमको जरूरत लगती है वहां ऐसा प्रॉब्लम कहीं क्यों नहीं। उठे डर सकता है और जरूरत लगे वो जो परिणाम उठे हो उसको हम रोक सके, ये भी नहीं बन पाएगा। दूसरा तो कम रोक जाएगा उसका, कम रोक सकता है उसको, ये भी तो बन सकता है, लेकिन जरूरत ही नहीं लगी। जरूरत कुछ और है तो वहां परिणाम लगता है, जिसकी जरूरत वहां तो परिणाम लगता है, सहज लगता है, तो कृतज्ञता भी नहीं करनी पड़ती है। तो वहां ये प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्रॉब्लम इसलिए है कि जरूरत नहीं लगी है। जरूरत लगे तो रुचि उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है तो वही चलता रहता है, जिसकी जरूरत है उसके परिणाम चलते रहते हैं। रोकना चाहे तो भी रोक सकते नहीं है। ऐसी सच्ची इच्छा, इच्छा को भावना को भी बहुत करके प्रारंभिक जीव को सत्पुरुष के समागम से ही प्राप्त होती है। तो ये कहेंगे कि सुभाष भाई जी तो ठीक थे, या कोई पात्र विमोक्ष थी तो ठीक थी कि पहले से ही मुक्त होने की भावना थी और उनको सत्पुरुष भावना के अनुकूल मिल गया, लेकिन कईयों को नहीं होती है। इसके लिए क्या इलाज है, कि इसके लिए वही इलाज है कि सत्पुरुष के समागम में आएगा तो यही सच्ची भावना उसकी नहीं है तो उत्पन्न हो जाएगी। ये भी सत्पुरुष का प्रभाव कहो, प्रताप कहो, उपकार कहो, बुद्धि कुछ कहो, ऐसी भावना उत्पन्न करने में भी कराने में भी सत्पुरुष ही निमित्त होता है, असत्पुरुष निमित्त नहीं होता है। ऐसी बात है, दोनों सही है, क्योंकि वो भी बनता है। कईयों को तो सत्पुरुष के समागम में आने से ऐसी भावना हो जाती है, उनको पहले से होती है। दोनों प्रकार के जीव को सत्समागम तो लाभकारी है ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा समागम परम दुर्लभ है, ये सस्ती चीज नहीं है। क्या सत्पुरुष का समागम है, ये परम परम दुर्लभ है। परम दुर्लभ भी परम परम दुर्लभ है। इस ये तो पंचम काल है, चतुर्थ काल में भी दुर्लभ माना गया है, तो पंचम काल में दुर्लभ हो गए उसमें कोई विचार करने की जगह नहीं है, तो हो ही हो गया ऐसा। जिम्मे मौजूद है, लेकिन जिम्मे से अगर काम हो जाता है तो ये तो मौजूद थी भी क्यों नहीं हुआ। और लिखावट में ये बात प्रयोग की आसक्ति नहीं है, इसके लिए क्या करोगे, लिखते ही कृपा लोगे। शास्त्र में मार्ग कहा है किंतु मार्ग का मर्म नहीं कहा है, कहा है नहीं कहा, इसके लिए क्या करोगे। शास्त्र में मार्ग कहा है लेकिन मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में पड़ा हो रहा है, वो तो वहां से मिलेगा या है वहां से मिलेगा, तो कोई शास्त्र में से मिलने वाली चीज नहीं है। सब बात तो बहुत बहुत कही है, ऐसा समागम और उस समागम की पहचान, देखिए क्या लिखा, समागम तो बहुत हुआ है, एक बोले बोलते हुए कि बहुत बार मिला है, लेकिन पहचान एक बार भी नहीं हुई है। वह पहचान होने की पात्रता में हम आए ही नहीं कभी, ये बात हुई है। हमें कभी इतनी गर्व नहीं हुई है, तुम्हें योग उससे समागम हो गया हो तो तुमने का जो नोट है वो खर्च कर लिया, सिर्फ उनकी नोट का खर्च नहीं हुआ है, समागम मिले, सत्पुरुष का समागम मिले और हमने लाभ नहीं पाया तो इस नोट का खर्च नहीं किया है, इस नोट को हमने जला दी है। क्या कर दिया, उसको हमने दिया सलाय लगा दी, ये बात हो गई। तो इसलिए जो लाभ सत समागम का है उसमें पहचान नहीं हुई तो ये पुण्य की नोट की राख हो गई, रक्षा हो गई, ये बात हो जाती है। इसलिए ऐसा मौका को आत्मार्थी को जाने देना चाहिए नहीं, पूरी ताकत से काम लेना पड़ेगा। समागम दुर्लभ है, इससे भी इसकी पहचान दुर्लभ है और उन्होंने दर्शाया हुआ मार्ग की प्रति की जो बाद में आती है वो इससे भी दुर्लभ है। मैंने स्वाभाविक तो आई जाती है लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है इसका, जिसको पहचान हुई उसको आगे जाकर के उसके मार्ग की प्रतीति आ जाएगी, क्योंकि उसने पहचान में जीवंत मोक्ष मार्ग ही देखा है। सत्पुरुष में सत्पुरुष का दर्शन किया कि आत्मा का दर्शन किया, और आत्मा की संसार से छूटने की विधि का भी दर्शन, मुक्ति की कार्य पद्धति का भी दर्शन कर लिया, तो उससे उनको आ जाएगी। लेकिन ये भी आगे का कार्य है, उतना विकास होना चाहिए, सिर्फ संतोष नहीं पकड़ना चाहिए। तो उन्होंने दर्शाया हुआ मार्ग की प्रतीति और उस पर चलने की प्रवृत्ति प्रसाद, कुछ वहीं से दृष्टांत देते हैं अपने वचनामृत में। जब चक्रवर्ती को चक्रवर्ती पने का पुण्य का जो उदय आता है तो 14 रत्न की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें एक चक्र होता है, दो चक्र जिस पर वो लगाए छोड़ गए उसका सिर सिर हो जाता है, कोई उसको जीत सकता नहीं, इसके सामने कोई शस्त्र अस्त्र काम कर सकता नहीं है। तो क्या चक्रवर्ती संतोष लेता है, चलो अभी चक्र पर आ गया, मैं चक्रवर्ती हूं और चक्र की उत्पत्ति तो हो गई, अब जाएंगे कभी फुर्सत मिलेंगे तो 6 कुंड जीतने के लिए, ऐसा नहीं होता। जब आयुर्वेदशाला का सुपरिटेंडेंट जो होता है, वो अफसर होता है बड़ा, तो उनको आकर के प्रणाम करके विधि से बात करता है, महाराज आपके आयुर्वेदशाला में डेली चक्र रत्न का आना हो गया है, इस समाचार देने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, फिर तैयारी करो 6 खंड को जीतने के लिए। उसे वो गौतम सर देता है, देर लगाता नहीं है। ऐसे जिसको भी प्रतीति आती है, जिसको भी सम्यक दर्शन होता है, वो दर्शन चक्र है। क्या ये सुदर्शन चक्र है, दर्शन क्या सुदर्शन चक्र है, मुक्ति के लिए पुरुषार्थ हो जाता है। पूर्ण होने की भावना तो प्रारंभ में थी,
मुमुक्ष की भूमिका भी वहां से पूर्ण मूर्ति के पूर्ण हो जाना है। अब पूर्ण होने के लिए शस्त्र मिल गया, सुदर्शन चक्र मिल गया, उनको तेजी आ जाती है। अब तो सुखमय दर्शन हो गया ना, तो मुक्ति हो जाएगी हमारे, ऐसा ठंडा को रहता उसको उतारू हो जाती है। तो अभी मोक्ष के लिए तैयारी करना है, तो हो सके तो उतारू जी का तो इतना जोर था इस विषय में, इतना जोर था कि मैं तो पंचम काल को भी स्मरण में लाना नहीं चाहता हूं कि अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं होता है। क्या मेरी भावना तो पंचम काल को ओवरटेक करके प्रगति है, मैं क्या करूं? क्या जानता हूं आगम में प्रणाली है कि इस पंचम काल में यहां जन्म लेने वाले को, इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले को तो मुक्ति होती, लेकिन लिखा होगा मेरे परिणाम ये बात बर्दाश्त करने के लिए सया इतना उछल आता था। मुमुक्षु को पहले उछल आता है फिर ज्ञानी होता है। पूर्णता की पूर्णता का लक्ष्य माने क्या? कि अभी पूर्ण होना है, ऐसे बात है। तो पूर्णता का लक्ष्य में अभी पूर्ण हो ही जाता है, ज्यादा नहीं छोड़ता है, हो ही जाता है, ऐसी बात है। उसी को लक्ष्य कहते हैं, वरना लक्ष्य नहीं कहते हैं, एक जानकारी कहते हैं उसको। दर्शाया हुआ मार्ग की प्रतीति और उस पर चलने की प्रवृत्ति, ये सब उत्तर उत्तर जीव को परम दुर्लभ है। एक तो सत्समाज मिलेगा नहीं आसानी से, दूसरा मिले तो पहचान होना दुर्लभ है, पहचान होने तो प्रतीति आ जाए मार्ग की, और प्रतीति आने पर उसका पुरुषार्थ चलने लग जाए, ये बात उत्तर उत्तर दुर्लभ है। मनुष्य पर भी दुर्लभ है, एक तो चार गति में भटकता हुआ जीव को, संसार में परिभ्रमण करता हुआ जीव को मनुष्य पना ही बहुत बहुत दुर्लभ है। ये तो कात्कालीय न्याय से मिल गया है, तो मुफ्त में मिलती है इस चीज की कीमत आती नहीं है, सच बात है। उसमें भी ज्ञानी के वचनों का श्रवण का प्राप्त होना दुर्लभ है, दोनों पुण्य योग है, वो भी दुर्लभ है। इस प्रकार का पुण्य योग बहुत दुर्लभ है। देखिए जीव को लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिलना मामूली बात है, जीव को इससे आगे जाकर के देव गति मिल जाए कि जिस देव गति देव की संपत्ति के आगे यहाँ के मल्टी मिलियनर्स भिखारी दिखे, तो ये मामूली बात है। ये दोनों पुण्य योग इतने मामूली है, सत्पुरुष का समागम और वचन श्रवण का योग उतना मामूली नहीं है, सब लगा ले तो भी वो नहीं मिलने वाली चीज है, इतना इसका मूल्य की क्वालिटी अलग है। ये तो लोगों को बाह्य संपत्ति की कीमत है इसलिए दिखाना पड़ता है, वास्तव में ये पुण्य की क्वालिटी और ये पुण्य की क्वालिटी उतनी अलग है कि ये जो संसार में पुण्य कहा जाता है ये सब क्या है? विष्ठा का ढेर है और कुछ नहीं है, उसके आगे तो ये गंदगी है, विष्ठा का ढेर है। और ये जो पुण्य योग है वो पवित्रता को लाने वाली चीज है, जम्मू मरण को छुटाने छुड़ाने की चीज है। इसलिए पुण्य पुण्य में भी यही फर्क है, क्वालिटी डिफरेंस है इसमें, ये सब मिलना आसान है। अनेक बार मिल चुका है, क्या देव लोक का देव अनंतवार हुआ है, लेकिन आत्मकल्याण के लिए जो भी पुण्य संसाधन आदि मिलना चाहिए ये इससे बहुत कम मिला है। फिर भी इस जीव ने गलती किया, तो वहां भी अपना आत्म कल्याण के दरकार नहीं थी। ज्ञानी के वचनों का श्रवण प्राप्त होना, उसकी प्रतीति होना, विश्वास आना कि ये मेरे कल्याण का, वाकई मेरे कल्याण का मार्ग है, ऐसे विश्वास प्रतीति आ जाना और उनके कहे हुए मार्ग में प्रवृत्ति हो जाना, ये परम परम दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। अंगीकार करना, अमलीकरण हो जाना, इससे भी दुर्लभ है। ऐसा श्री वर्धमान स्वामी ने उत्तराध्ययन के त्रिजे अध्ययन में उपदेश दिया है। उत्तराध्ययन का उपदेश है, मूल सूत्र में ये उपदेश आया है। वो बात हम हमारे घर से भी कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी के वचन के बाद आपको बता रहे हैं, तो ऐसी बात है। वो क्या है कि खुद महावीर स्वामी के काल में थे, गांधी श्रवण ज्ञान से उनको पता था कि हम उस काल में थे, हमने ऐसा उपदेश सुना था, और वो उपदेश स्मृति उतनी तेज थी कि उत्तराध्यान में गंगर गौतम स्वामी ने उत्तराध्यान में वो बात कही है, जो शंकर देव ने सबों श्रवण वहां कही थी, वो उत्तराध्यान में रखी हुई है और ये हमको मालूम है। अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष का समागम और उनके आश्रय में विचरते हुए मुमुक्षुओं के मोक्ष संबंधी सभी साधन अल्प प्रयास से और अल्प काल से बहुत करके सिद्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। क्या हुआ अब कहते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष में क्या फर्क है कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष के समागम में और उसमें उसके आश्रय भावना से विचरते हुए मुमुक्ष को अपना मोक्ष संबंधित जितने भी साधन है, साधन अपने पर्याय है, साध्य मोक्ष है, ये बहुत करके अल्प पुरुषार्थ से भी, अल्प प्रयास में, अल्प पुरुषार्थ में, सहज मात्र में उनको ऐसा लाभ हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा फायदा है। क्या नहीं, काम तो उपादान करता है अपनी योग्यता से। बहुत से होते हैं समाधि में तो कोई भी काम करता है, इसका मतलब क्या कि काम करने वाला अपने उपादान से करता है, लेकिन वो उपादान को समागम का योग होगा नहीं होगा उसमें अंतर जो है वो दिखाने का अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष योग होता है तो अल्प प्रयास से काम हो जाता है, वरना कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आती है या परिणाम में चढ़ाव उतार आता है तो देर लग जाती है या थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो और परिश्रम लगता है उसमें और काल लग जाता है, परिश्रम भी ज्यादा लग जाता है। उसमें सब समागम का प्रत्यक्ष योग रहता है तो ये काम बहुत अल्प प्रयास से होता है। ये बात रूपालु देव ने अपने अनुभव से कही है। 194 था कहीं पर ये बात उन्होंने अपने अनुभव से कही है, परंतु ऐसा समागम का योग पाना दुर्लभ है। वो कुछ बहुत कीमती चीज है, ऐसा योग मिलना ये बहुत दुर्लभ है। अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष योग का महत्व भाषित हुआ है या नहीं हुआ है तुझे, ये अभिप्राय है। उस पर हमने दूसरा प्रकरण पूरा लिखा है बुद्धान दर्शन में, तो दूसरा प्रकरण है उसी कारण से लिखा है कि सत्पुरुष गुरुदेव थे, सत्पुरुष भी है और मुमुक्षु लोग भी है, लेकिन देखने में वो आता है कि प्रत्यक्ष योग का मूल्य भाषित होता नहीं है, बहुतों को नहीं होता है, किसी एक को होता है वो तो चल जाता है, जिसको होता है वो तो चल जाता है। और समर्पण कितना करते हैं लोग, तो प्रसिद्धि जब हो जाती है तब तो बहुत लोग मानने लग जाते हैं, गुरुदेव के पास हजारों लाख लोग आने लगे, और कितने तो अपने कुटुंब को छोड़ करके, व्यवसाय को छोड़ करके, मकान लेकर के या किराए पर वे वहां बैठ गए, और गुरुदेव की उपस्थिति में तो 300-400 की उपस्थिति मुमुक्षुओं की लगातार 12 मास रहती थी वहां। एक सौंदर्य का एक सबर वहां पर बस गया है, आजकल इतने मकान बन गए, फिर भी प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है, इस समर्पण नहीं है क्या? तो परिवार तो बंबई में रहता है, हम सोनगढ़ में रहते हैं, परिवार तो कलकत्ता में रहता है, तो कवर लोग नहीं छोड़ते हैं, देवी भाई के पिता जो है ग्रैंड फादर वहीं छोड़ते थे, हाँ बहुत है, दूर दूर से आकर के परिवार भर रहे, सिटी में रहे, वो छोटे गांव में रहे, कोई साधन सुविधा कम मिलती है छोटे गांव में, तो पूरा समय व्यतीत करते हैं वहाँ, शेष आयु कहीं का तो वहाँ है, इतना समर्पण हुआ फिर लाभ कितना हुआ, ऐसा क्यों, ये सब विचार का मुद्दा है, पहचान नहीं हुई क्या? हमारे पास 10 लाख रुपया है तो 10 लाख का हीरा हम खरीद सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपया से हीरे की पहचान नहीं कर सकते हैं। तो जिसके दिल में 10 लाख नहीं है वो हीरा की पहचान कर सकता है, एक अलग अलग चीज है, खरीदना अलग चीज है, क्योंकि वो तो पैसा देकर खरीदना पड़ता है, उसे समर्पण करना अलग चीज है, पहचान होना अलग चीज है, बिना पहचान समर्पण होता है, तो पहचान पूर्वक तो समर्पण होता ही है, तो समर्पण है वो बाह्य चीज है, पहचान है वो अंतरंग चीज है, पहचान पूर्वक समर्पण होना एक बात है, बिना पहचान समर्पण होना एक दूसरी बात होती है, तो काम में आने वाली चीज नहीं है, मूल बात होनी चाहिए, पहचान नहीं चाहिए,
पहचान
करता है, पहचान करने का ज्ञान का कार्य है। किसके किसका व्यवसाय आप करते हो? तो पहले से पता है क्या? नहीं, कैसे किया? हम तो नहीं जानते इलेक्ट्रिसिटी का व्यापार कैसा करना, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते थे, आपने कैसे जाना? बस ऐसी बात है, जहाँ जरूरत है वहाँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज उपस्थित हो जाता है, पाप प्राप्त कर देता है, यहाँ जरूरत लगी नहीं है, ऐसी बात है, जरूरत नहीं लगी है, खोज नहीं चली है, और नहीं मिला इसके पहले क्या हालत थी, तो थोड़ा पहचान नहीं हुई तो क्या हालत थी वो देख लेना चाहिए, सब पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति पहचान करने लायक जब है ही नहीं तो होगा कहां से, जब हमारी स्थिति योग्यता ही नहीं है तो कहां से होगा, कहीं को ये आश्चर्य होता है, क्या हम गुरुदेव को नहीं मानते थे? ऐसा कहते हैं मानते थे, लेकिन वो मान्यता मुट्ठी में बंद रखने लायक है, वो मुट्ठी खोलने से तो खुल जाएगी, ये बात है। इसलिए ऐसा योग पाना दुर्लभ है,
वही समागम के योग में मुमुक्षु जीव का निरंतर चित्त वर्तता है, ये सिद्धम है मुमुक्षु का। क्या अगर प्राप्त नहीं हो तो भी उसको यही रहना चाहिए, और प्राप्त होने से भी यही रहता है कि ऐसा समागम के योग में ही मुमुक्षु जीव का चित्त वर्तता है, निरंतर चित्त वर्तता है। बस देख लेना, अगर ये बात नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं समागम। इसका मतलब क्या होता है कि जो चाहता है उसको तो निरंतर उसकी चाहना रहती है, और चाहना निरंतर नहीं रहती उसके, इसके मतलब हम चाहते नहीं है, बात खत्म। जब चाहते नहीं है तो पहचान होगी कहां से, सीधी बात। बहुत संक्षेप में मुमुक्षु कैसा होना चाहिए उसका चित्र खींचा है बराबर, ऐसा मुमुक्षु कैसा होता है। ये तो परिवार के प्रति पत्र नहीं है, सभी मुमुक्षु के लिए ये पत्र है, सबों के लिए सदर में ये चीज है। उसको सत्पुरुष का योग पाना तो सर्व काल में जीव को दुर्लभ है, इस काल में नहीं चतुर्थ काल में भी, जो धर्म का काल गिना जाता है माना जाता है, और बहुत धर्मात्माएं होते हैं, बहुत सत्पुरुष होते हैं, बहुत मुनि होते हैं, अनेक तीर्थन कर्मी होते हैं, महावीर में भी दुर्लभ है, महावीर भी ये योग दुर्लभ है, अभी तो इधर तो हो ही हो गए। सत्पुरुष का योग पाना तो सर्व काल में जीव को दुर्लभ है, सर्व काल में सर्व क्षेत्र में दुर्लभ है, ऐसा समझ लेना। उसमें भी वर्तमान ऐसा दुष्म काल में तो क्वचित ही ऐसा योग बनता है, क्वचित ही, क्यों कोई जगह कोई होता है बेचारे को ध्यान नहीं जाता है। अगर प्रसिद्धि होती है तो पहचान ध्यान नहीं जाता है, इसका पहचान नहीं आती इसका मतलब ध्यान नहीं गया तो ध्यान नहीं जाता, इसलिए क्वचित ही योग बनता है। और पहचान नहीं हुई तो योग बना नहीं बना दोनों बात बराबर हो गई। विरला ही सत्पुरुष विचरते हैं, उनका समागम का लाभ अपूर्व है, ऐसा जान करके ऐसा समझ करके जीव को मोक्ष मार्ग की प्रतीति करके इस मार्ग का निरंतर आराधन करना योग्य है, उसको पहचान करना, समागम करना, समागम में पहचान करना, पहचान कर उसके मार्ग की प्रतीति करना, और प्रतीति आने से मार्ग में का पुरुषार्थ चालू निरंतर रखना, आराधन करना, ये आज्ञा है। क्या ये सत्पुरुष की आज्ञा है, हमको तो मिला है नहीं, हमको तो मिला है, बात नहीं चलती है, ऐसा होता है, मिलता है तो ऐसा होता है। आज्ञा शब्द में बहुत बात पड़ी है, सिर्फ संयोग हो गया इतनी बात नहीं है, पहचान हुए, मार्ग की प्रतीति हुए और आराधना भी हुए, यहाँ तक पहुंचने की बात है, जब ही आज्ञा में आया है, वरना आज्ञा में नहीं आया। आज्ञा में तो नहीं आया, भक्ति में नहीं आया है। क्या क्योंकि आज्ञा से भक्ति कौन सा लिया, 673 में आज्ञापण वर्तता है वो भक्ति करता है, जो आज्ञापण नहीं वर्तता है वो भक्ति नहीं करता है। लिखा तो ऐसा ही है, कृपालुओं ने तो ऐसा लिखा है, अगर हमको मानना नहीं मानना है वो हमारी स्वतंत्रता है। सब बात तो बिल्कुल गुजराती में लिखी हुई है अपने लोगों के लिए।
बाबू जी अभी प्रत्यक्ष हो गया है ना,
अभी तो परोक्ष है, अभी कहाँ प्रत्यक्ष चलता है तो प्रत्यक्ष कैसे कहेंगे। लेकिन बात तो ऐसी लिखी है, जो लिखी है वो तो ऐसी लिखी है। वो भी लिखी छसोत्राण में, वही लिखी है। कोऑर्डिनेशन तो करेंगे कि नहीं करेंगे, 693 और 783 को मिलान करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको अनुकूल लगे ऐसा अर्थघटन करके संतोष कर ले, ऐसी बात नहीं चलती। ऐसा जान करके जीव को मोक्ष मार्ग की प्रतीति करना और निरंतर मार्ग का आराधन करना योग्य है। हम लोग नहीं है तो क्या करना, वो भी सभी बात नहीं है। ये बात प्रत्यक्ष की बात इसलिए यहाँ पर सुभाष भाई के पुत्र को लिखी है कि आपके पिताजी को तो लाभ हुआ है प्रत्यक्ष योग से ही, पर अब भी प्रत्यक्ष योग है अगर तुम्हारा ध्यान जाता है तो, लक्ष्य जाता है तो कुछ आत्मकल्याण हो जाए, भवन से निवेड़ा हो जाए, ऐसा मौका है तुम्हारे लिए, ऐसा संकेत कर दिया है। और ज्यादा क्या लिखे, लिखा है तो स्पष्ट लिखा है। नामी कृपा मुझे रखा है क्या कृपा बहुत मोक्षों के प्रति।